और अभी बहुत सुंदर सत्र की ओर हम जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर टॉक शो का आयोजन किया गया है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। दिव्यता क्या है और दिव्यता की धारणाएं कैसे हो सकती है, दिव्य गुणों की बातें कही हैं, परंतु उस चीज को, दिव्य गुणों को, दिव्यता की शक्ति को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से धारण किया जा सके, क्या ये वास्तव में संभव है या असंभव, इस बात को और गहराई से जानने के लिए एक टॉक शो आपके समक्ष रखा है। और इस टॉक शो का विषय वैसे भी आपको बताया है, और इस टॉक शो में हमारे बीच 5 गेस्ट हैं। मैं बारी बारी में सभी गेस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आदरणीय राजयोगिनी तृप्ति बहन जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तृप्ति बहन जी मंच पर पधारेंगे। आदरणीय तृप्ति दीदी जी, बचपन से ही आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, मात्र जब आप 19 वर्ष के थे तभी से ही, और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बीएससी होम साइंस से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके पश्चात आप जब 25 वर्ष की हुई तब से आपने निर्णय लिया कि अपना समस्त जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करें। 50 वर्ष से आप समर्पित रूप से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। ताली बजा सकते हैं दीदी के स्वागत में। दीदी आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। और आप आर्ट एंड कल्चर विंग के गुजरात जोन के आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आपको देखा और समझा वो ये है कि आपके अंदर सरलता, नम्रता बहुत गहराई रूप से है। मैं तो यूं कहूंगी कि भगवान ने आपके अंदर दिव्य गुण तो बचपन से ही दे रखी है, और इसीलिए भगवान ने इतना जल्दी आपको चयन किया है और इन दिव्य गुणों को अपने जीवन के अंदर और निखार करके कैसे दूसरों को भी दिव्य गुणों को धारण करना चाहिए ये सिखाने के लिए अपने आप को जीवन प्रदर्शित किया है, जीवन को समर्पित किया है। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर हमारा दूसरा गेस्ट, राजयोगी आदरणीय बीके सतीश भाई जी। सतीश भाई जी हमारे वरिष्ठ भाई है, माउंट आबू हेडक्वार्टर के आर्ट एंड कल्चर विंग के आप कोऑर्डिनेटर हैं। 1970 में, हाँ, आपका जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं सतीश भाई जी। आप अपना सीट ग्रहण कर सकते हैं। 1970 में संस्था के साथ आप संपर्क में आए, और 1981 में आप माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा आपका बायोडेटा है, क्योंकि आप जन्म से ही, जब बाबा के बच्चे, जब हम कहते बाबा के बच्चे बने, यानी जब परमात्मा का परिचय आपको मिला, तब से ही आपके अंदर परमात्मा ने वो कला भरी है, और एक ऐसी विशेष कला जो आपने किचन के अंदर सेवाएं देते हुए, भगवान के शिव भोलेनाथ के भंडारे के अंदर सेवाएं देते हुए, उस कला का बहुत बखूबी रूप से आपने उपयोग किया है। वो कला है गीत लिखने की और गीत गाने की कला। आपने लगभग 6,000 से भी अधिक परमात्मा ईश्वरीय याद के गीत लिखे हैं, और उनमें से 600 गीत रिकॉर्डेड हैं, और आपके गीत को कई फेमस कलाकारों ने आवाज दी है, जैसे महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा पौडवाल जी, सुरेश वाडकर जी, साधना सरगम जी, अलका यानकी जी, आदि आदि ऐसे फेमस गायकों ने आपके गीत को आवाज दिए है। ऐसे महान हमारे विभूति को हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। अभी मैं तीसरे गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, रिस्पेक्टेड कमल नथानी जी, खास मुंबई से पधारे हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी बहुत लंबी चौड़ी बायोडाटा है, इसको शॉर्ट करने में काफी टाइम लगा हमें। 3 दशकों से आप से अधिक समय से आप भारतीय फिल्म में टेलीविजन उद्योग में एक जाना माना नाम है आपका, और आपने अपने करियर की शुरुआत जो फिल्म है, लोकप्रिय फिल्म चश्मे बदूर से की थी, और 1983 में जो पहली वीडियो फिल्म भारत के अंदर जो फीचर फिल्म बने हैं वो आपके द्वारा बने हैं। इसमें आपका स्वागत में आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। और आपने टीवी पर जो पब्लिक अवेयरनेस सोशल कैंपेन की है, प्रथम ऐसे आपने टीवी पर की है, आपकी ये पहली इनिशिएटिव रही है, और टीवी पर म्यूजिकल शो की शुरुआत भी आपने ही किया है, और साथ ही साथ अब तक के 6 फीचर फिल्म्स आपने बनाए हैं, और उसमें से जो नेशनल अवार्ड मिले हैं जिस उस फिल्म का नाम है दी होप, और नेशनल अवार्ड के लिए एंट्री लिया था, और 400 से अधिक विज्ञापन फिल्में और कॉरपोरेट फिल्म आपने बनाए हैं, बना चुके हैं, और आप एक प्रतिष्ठित परियोजनाओं में के साथ 20 से अधिक सरकारी मंत्रालयों के लिए काम किए हैं। और हम बातचीत कर रहे थे, आपके विचारों को मैंने सुना, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही नेक तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं। कमलनाथन जी, आपका बहुत बहुत दिल से इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। अभी मैं चाहूंगी मंच पर बुलाना डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी को। डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जी खास गुजरात से पधारे हैं। आप बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन पर है, और आप फाउंडर है मेडिलिंक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। आप फाउंडर है मेडिलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस, जो कि 2012 से है। आप डायरेक्टर है मेडिलिंक एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि 2016 से है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है राजपथ क्लब, जो कि 8 वर्ष से चल रहे हैं। आप एक्स को ओपीटी डायरेक्टर GCCI 2 साल से हैं, और TIE बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंस लास्ट 4 ईयर्स। आप डायरेक्टर ऑफ UNI यूनी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिंस 2023 से हैं। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं एक ऐसे बाबा की लाडली बच्ची को बुलाना चाहूंगी जो विशेष रूप से हमारे बीच में है, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। आप इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं। आपकी ताली बहुत धीमी पड़ गई है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी एक बहुमुखी व्यक्तित्व है, विचारक है, लेखक है और गायक है। कल रात को बैठे बैठे रिसेप्शन में हम गीत सुन रहे थे, आपकी आवाज बहुत बहुत सुंदर, और जिस तरह से आप लय को ऊपर और नीचे की तरफ ले जा रहे थे, सबको मोह लिया। जहां जो भी लोग वहां पर है, तो आप बहुत सुंदर गायक भी हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के महान कलाकार के रूप में आपने स्थान लिया है। आपने NDT विश्वविद्यालय से फोक एंड मीडिया में आपने डॉक्टरेट किए हैं। आपने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, हिमाचली, डोगरे और मराठी जैसे कई भाषाओं में प्रदर्शन करने में आप महारत प्राप्त है, और आपने 1993 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। एशियाई संगीत समारोह बाली इंडोनेशिया में भी आप इसमें शामिल रहे। 1996 में शाक तरानलोर रशिया के अंदर जो प्रोग्राम हुए उसमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप रिसेंटली राष्ट्रपति भवन के अंदर आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं, आप हमारी बहन को सम्मानित किया है। ताली बजा करके स्वागत करेंगे, और साथ ही साथ शैलेश जी को कल्चरल एम्बेसडर बनने बन करके विदेश में भारत का प्रतिनिधि करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे विभूतियों को हम मंच पर बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि बैच और गुलदस्ता के साथ स्वागत करें। हमारे मंच बहुत सज गया है सुंदर तरीके से, टॉक शो के लिए तैयार है, और शायद आपके मन में भी कई प्रश्न उठेंगे, क्या सचमुच मानव जीवन के अंदर दिव्य गुणों की धारणा संभव है या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न है तो कागज के ऊपर लिख करके आप मंच की ओर बढ़ा सकते हैं, आपके प्रश्न को इन सभी गेस्ट के समक्ष हम रखेंगे। बहनें हमारे बीच में हैं सभी गेस्ट के स्वागत करने के लिए, जोरदार तालियों के साथ। आप ये समझिए कि केवल मंच पर बैठे हुए इन आत्माओं के लिए ही नहीं, अपितु आप सबका भी स्वागत हो रहा है। साथ साथ तालियां जारी रखें, क्योंकि ताली बजाने से खुशी का माहौल बनता है और साथ साथ हेल्थ भी अच्छे होते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। भारतीय संस्कृति के अंदर स्वागत करना, हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत सुंदर रीति रिवाज है। जो सबका स्वागत करते हैं वो खुद का स्वागत परमात्मा स्वयं करते हैं। थैंक यू। अभी ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉक शो के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सो आप सभी तैयार हैं, क्योंकि आप सब कुछ दिनों से, एक दो दिन से यहाँ पर सम्मिलित हैं। यहाँ के वातावरण को आपने देखा, यहाँ के शेड्यूल को देखा, टाइम टेबल को देखा। जब आप सब से मुलाकात हो रही थी, आप सब ने बहुत भावना से, भाव विभोर होकर के यहाँ के वर्णन किए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम इस टॉक शो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन हम चाहेंगे मेरे समीप बैठे हुए डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को हम सबसे पहले प्रश्न करना चाहेंगे। पहला प्रश्न ये है कि हम बातें सुन रहे हैं मानवता के अंदर दिव्य गुणों की धारणा, और यहाँ तो हम स्पष्ट देख रहे हैं बहने भाई बहुत प्यार से व्यवहार में आ रहे हैं, उनके गुणों को हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में दिव्यता मानव स्वभाव का हिस्सा है या ये एक कल्पना मात्र है, या बस हम जैसे हमारी बड़ी दीदियां डिस्कोर्स कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन के अच्छा लगता है, क्या सिर्फ कनरस ही है या सचमुच मानवता के अंदर दिव्यता ये स्वभाव अंदर निहित है? क्या है ये दिव्यता? दिव्यता का स्वभाव है क्या?
ओम शांति। पहले तो मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, और हमारे समक्ष जो बैठे हैं उन सभी के अंतर्निहित ब्रह्म को प्रणाम करती हूँ। ये आपने जो पूछा कि दिव्यता है क्या, ये मनुष्य में जो हम शरीर धारण किया है, एक बात मुझे आज सुबह जो महसूस हुआ वो ये कि ये जो ओम शांति है ये महामंत्र है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हम सभी ब्रह्मांड उस यूनिवर्स से गवर्न होते हैं। हमारे तुलसीदास जी ने कहा भी है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तैतरीय उपनिषद का ऋषि कहता है तत्वमसि सो हम, जो तुम हो वो मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं आ गया हूँ, अपनी यात्रा तय करूंगा, आप सिर्फ हमारे एक निमित्त मात्र हैं। तो ये गुण हमारे अंदर होते हैं, हमें पता नहीं होता है, और हम अपने आप से निर्णय लेकर चलते रहते हैं, क्योंकि हमें कोई दृष्टा नहीं है, दिखाने वाला नहीं है, कोई कृष्ण जैसा सारथी नहीं है जो हमें बताए कि ये उचित है ये अनुचित है। तो शक्ति तो है, क्योंकि हम उस परमात्मा का एक अंश हैं, और ये यात्रा जो है अहम से परम में विलीन होने की है, तो उसको हमें लेके ऐसे चलना चाहिए। और आज की जो मानसिक स्थिति है, आज जो पूरा ब्रह्मांड अशांत है, तो उससे हमारे आप अंदर भी अशांति है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से गवर्न होते हैं। और दूसरी बात है कि जैसी हमारी स्थितियां रहती हैं, परिस्थितियां रहती हैं, उसके अनुरूप हमारे विचार प्रकट होते हैं और उन विचारों से हम चलते हैं। तो आज ये जो हम यहाँ चिंतन और मंथन कर रहे हैं, तो इसका कुछ परिणाम निकलेगा। हमारे यहाँ एक कवि दुष्यंत हुए, जिन्होंने लिखा है कि पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आज पड़ी क्यों? क्योंकि हम ऐसा जीवन देख रहे हैं अपने आसपास, पेशेंस नहीं है। जो देवत्व का गुण है, क्षमा, पेशेंस, करुणा, प्यार, प्रेम, हम अपने काम के अनुरूप लोगों से मिलते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जबकि जीवन ऐसा नहीं है। क्षमा जो है वो बहुत अच्छा गुण है देवत्व का। आपने कहा कि दिव्य गुण क्या है, कि उससे आप अपने आप को स्वयं बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बीमारियां नहीं लगती हैं, आप चिड़चिड़े नहीं होते हैं। क्योंकि जो आप लेते हैं, धर्म क्या है, धार्यते इति धर्म। आज आचरण और आवरण फर्क है, आचरण कुछ और है, आवरण कुछ और है, तो उससे भी हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो ये जो आज हमारा चिंतन का विषय रखा गया, इससे हम कुछ सीखें और आप सभी अपने अंदर ये संकल्प करें, तब तो इसका फायदा होगा। क्योंकि संकल्प से ही होती है सिद्धि। आप जैसा विचार बनाते हैं, उस तरह का संकल्प लेते हैं, तो वैसे ही आप काम कर पाते हैं। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। और जो फिल्में, टेलीविजन या जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल देख के हम सीख रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा आहत करता है, दुखी करता है। क्योंकि जीवन ये नहीं है। हमारे यहाँ हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि हम किस तरीके से मीडिया को देखें, कैसे उसको ग्रहण करें। तो जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है उसे लोग स्वीकार रहे हैं। तो बाबा ने ये जो आदेश दिया, कि हमारी चंद्रिका दीदी ने इस तरह का सब्जेक्ट रखा, कि हम दिव्यता कैसे अपने अंदर जो है, सोई हुई सुप्त नदी है, उसको कैसे जगाएं। और ये जो राजयोग है वो इसका सबसे सहज माध्यम है, अगर हम जुड़ेंगे यहाँ से। तो मैं जब जुड़ी ना गोरेगांव में, दयाल भाई ने मुझे राधा बहन से जोड़ा, तो उन्होंने एक सूत्र दिया कि बाबा तो आपके साथ हैं हमेशा, आप उनको बोल के हर काम करिए, देखिए कितना आसान हो जाता है। और मैं वाकई बता रही हूँ कि मैं यही करती हूँ और वो हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा ही कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं, क्योंकि कर्ता वो है, हम तो एक निमित्त हैं। तो इसलिए जो दिव्यत्व हमारे अंदर, देवत्व है, जो दिव्य भावनाएं हैं, जो भाव है, संवेदनाएं हैं, हम दूसरे ईश्वर जीव अविनाशी, दूसरों से हम जीवों से अलग कैसे हैं, वो इसीलिए है कि हमारे पास जिज्ञासा है, कल्पना है, उड़ान है, समर्पण हम कर सकते हैं, हम तथ्य को जान सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। जबकि दूसरे जो पशु पक्षी हैं, वो कोई देवता से शिकायत नहीं करते हैं कि अरे आज तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हम ही शिकायत करते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया। तो ये जो क्यों क्या, ये तर्क हमारे पास है। और जब हमें अच्छा गुरु मिलते हैं, अच्छी संस्थाएं मिलती हैं, आपका ये विश्वविद्यालय मिलता है जो राजयोग का है, यहाँ जो एनर्जी हमारे बड़ी दीदियों, नानियों ने, दादा ने, सबने दिया है, उसी का ये प्रभाव है कि हम सब यहाँ आकर इतने डिवाइन और कूल हैं कि जैसे लगता है कि कोई विचार है ही नहीं हमारे पास। तो वो भी तो मनुष्य ही रहे ना, हमारे आप जैसे ही थे। ये जो बहनें बैठी हैं, ये दिव्य हैं, दिव्यत्व इनसे आप सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ये भी तो दिव्य गुण है ना आप में। तो आपने जैसे अपने गुणों को जगाया, अभी छोटे बच्चों को आप लोग सिखा रही हैं, तो वो बच्चा जब आगे जाएगा तो वो भी यही कहेगा और करेगा। तो इससे हम, हमारे पास ही हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी बीके रही, आज अपने गुणों के चलते, अपनी विसंगति पूर्ण जिंदगी से लड़ते लड़ते बाबा ने उन्हें सीख दी, आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो भी दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, उनका संकल्प, जो भी वो संकल्प करते हैं वो लेकर चलते हैं और उसे पूर्णत्व देते हैं। तो हमारे अंदर ये पावर है, सिर्फ हमें कमी है बहन अपने संकल्प को अपने साथ लेकर चलने की। हम क्यों भटक जाते हैं? वो दृष्टि परमात्मा दे कि हम सही चीज देखें और उसी पर चले।
वेरी नाइस, थैंक यू शैलेश जी, आपने बहुत सुंदर रीति से बताया कि सुषुप्त रीति से हमारे अंदर है, लेकिन दिव्य गुण ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन इसे जगाने की आवश्यकता है। अगर हमें सही दिशा मिले, सही गुरु मिले, सही रास्ता बताने वाला मिले, तो हम आसानी से इसको जगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो गेस्ट बैठे हैं पैनलिस्ट, आप में से कोई इस बात पर और ऐड करना चाहे तो आपको मोस्ट वेलकम है।
नमस्कार, ओम शांति। एक्चुअली मैं एक बहुत ही साधारण सा आदमी हूं और यहां मंच पर जो बैठे हैं वो बहुत ही विद्वान और इस सब्जेक्ट को लेके महानुभाव है। मैं जो भी बात करूंगा या करता हूं वो बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। जो मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनके मन में प्रश्न उठते हैं, जिनकी समस्याएं हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें जो है बड़ी अच्छी लगती हैं, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हम सब इन सब चीजों को अपने अंदर ढाल सकते हैं? और अगर ढाल सकते हैं तो कैसे और कितना और कब? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थ्री एस्पेक्ट्स। सब्जेक्ट हमारा है दिव्य। अभी बहुत सारे बच्चों को, लोगों को एक्चुअल अर्थ जो है दिव्य अर्थ वो समझना बहुत जरूरी है। करुणा, सेवा, प्रेम, शांति, वो चीजें, वो आचार जो हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे अपने समाज में, अपने आसपास, अपने घर में कितना शांति प्रेम ला सकते हैं, इस अर्थ को समझना जरूरी है। दिव्य अर्थ को अच्छी भली भांति समझना जरूरी है और ये हम समझते हैं अपने आसपास से ही। माँ अपने बच्चों को समझाती है, पिता अपने बच्चों को ये ज्ञान देता है, पर वो ज्ञान कितना उन बच्चों तक पहुंचता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के युग में जहां कंप्यूटर, मतलब बच्चों को कुछ भी आप समझाएं तो वो बोलते हैं हमको पता है, हमने गूगल से सब समझ लिया। अब वो गूगल इम्पोर्टेंट है या माँ बाप इम्पोर्टेंट है? क्या गूगल उनको वो शिक्षा दे सकता है? अगर गूगल शिक्षा दे रहा होता तो हम यहां नहीं होते। इसका हम सब यहां हैं और इस मंच पे अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ये संस्थाएं हैं, बाबा हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमको यहां समझ में आती हैं, ये गूगल पे नहीं मिल सकती, ये कोई आपको बता नहीं सकता। मेरा पहला यहां आने का अनुभव है, इतना अलौकिक, इतना दिव्य, इतना शांतिपूर्ण। पिछले 24 घंटे में जब से मैं यहां आया हूं, ना मैंने फोन को देखा है, ना मैंने एक कॉल किया है, तो जो वातावरण है, जो यहां का जो वातावरण है, यहां के जो लोग हैं, यहां में जो श्रद्धा है, यहां जो समर्पण है, वो जैसे ही मेरे ख्याल से हम बाहर निकलेंगे तो वो एक बदलाव महसूस होगा। तो इसलिए मुझे लगता है हम सबको यहां आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। जो हम यहां से लेकर जाएं वो हमारे साथ रहे। वो मुझे मालूम है कि वो 100% नहीं रहेगा, जाते ही हम अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी अपनी परेशानियों में, अपने अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। लेकिन 100 में से अगर 30%, 35%, 40% वो संस्कार हम अपने साथ लेकर गए तो वो एक, उसका एक दिव्य अर्थ निकलता है। सो मैं यही कहना चाहूंगा, इसके आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच जी।
शांति, जैसे इन्होंने बोला वैसे ही अभी हमें एक एक्सरसाइज करवाई, दिव्यता कॉन्स्टेंट प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आज जैसे इन्होंने बोला कि हम यहाँ आए तो हमारा 30% कॉन्शियसनेस में हमारा इसका इफेक्ट रहा है. तो जैसे अभी एक्सरसाइज बताई कि हम दो कदम आगे चलते हैं, तो बिकॉज हम ये संस्कार बहुत जन्मों से लेके आ रहे हैं तो वापिस हम उसी जंजाल में फंस जाते हैं. तो हमें वापिस इसी कोई एनवायरमेंट में कॉन्स्टेंट प्रोसेस, हमें कॉन्स्टेंट अपने आप को दिव्यता के माहौल में ले जाके अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा. ये अपने आप नहीं होने वाला. अगर विकृति भी अपने आप नहीं आई है तो स्वीकृति भी अपने आप नहीं आएगी. उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे और वो प्रयास एक बार करने से कभी नहीं होने वाले. हमें कॉन्स्टेंट करना पड़ता है. जैसे हमें ब्रह्म कुमारी जी ने सिखाया है कि हम कॉन्शियसली बिहेव करें, किसी दूसरी आत्मा से हर मोमेंट याद रखे कि हमें इससे प्रेम भाव से शांतिपूर्वक और कोई भी एक्सपेक्टेशन से बिना हमें इनके लिए अच्छा काम करना है. धीरे 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 ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस करते रहेंगे तो अपने आप दिव्यता बढ़ेगी, स्प्रेड होगी, एक में से दो में, दो में से चार में, और धीरे धीरे एक्सेप्टेशंस भी आने लग जाएंगे. अभी इतना माहौल नेगेटिव है कि दिव्यता लगता है कि नहीं नहीं ये तो बेवकूफ है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं. जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दिव्यता बढ़ती जाएगी और वो लोग बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी.
थैंक यू शिल्पा जी. बात चल रही है माहौल की, यहाँ का माहौल इतना डिवाइन. अब जब वहां जाएंगे वो डिविनिटी बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाता है. और आपने शेयर किया कि जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस पर लाएंगे थोड़ा थोड़ा स्टेप बेबी स्टेप्स लेते जाएंगे वो फिर आते जाएंगे. परंतु ये जो बाहरी माहौल जो हम किसको कहते हैं कलयुग, कलयुग का जो समय चल रहा है, इस सिनेरियो को देख करके लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना, कंपैरिजन की भावना से भरपूर है मन के अंदर. और उसके कारण से कुछ भी काम करते, छोटा सा भी काम करते तो उनके मन के अंदर तनाव हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है. जरा सी बात हुई नहीं है वो डिप्रेशन के कारण से अपने जीवन को खत्म करने की उस दौड़ में चले जाते हैं, या कुछ किसी को मारने के लिए या तो अपने खुद के जीवन को खत्म करेंगे या किसी के जीवन को खत्म करेंगे. ये आजकल चल रहा है. तो ऐसे माहौल में रहते हुए आप कह रहे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये होना चाहिए. तो मैं सतीश भाई जी से पूछना चाहूंगी, ऐसे माहौल में रहते हुए दिव्य गुणों की धारणा करना क्या व्यावहारिक है? आश्रम के अंदर तो ठीक है, माहौल सुंदर बना हुआ है, लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं, अपने प्रोफेशन कर रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, ऐसे माहौल में रहते हुए दिव्य गुणों की धारणा करना क्या व्यावहारिक है या कल्पना है?
ओम शांति. सम्मानित मंच, हमारे पास में दीदी बैठी हैं, सन्मुख बड़ी दीदी बैठी हैं, आप सब बैठे हैं, विद्वत जन बैठे हैं. बहुत अच्छी बात है कि जो हमको ये दिव्य गुणों की धारणा की बात हो रही है, क्या इसको हम बाहर धारण कर सकते हैं, माहौल में धारण कर सकते हैं या नहीं, यही बात है ना. इसका एक अपने यहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग की टीचिंग्स मिलती हैं उनके चार स्तंभ बताए गए हैं कि राजयोग माना परमात्मा से संबंध तब हम जोड़ सकते हैं जब हमारे जीवन में चार पिलर मजबूत हैं, जिनमें है ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता प्योरिटी, दूसरा है सत्संग, तीसरा है शुद्ध अन्न और चौथा है दिव्य गुणों की धारणा. ये चारों सब्जेक्ट्स हैं. जब से ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जैसे आप सब बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ जन कि यहां पर आते हैं तो बहुत अच्छा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है वैसे हम ढल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके लिए रोज जरूरी है कि ईश्वरीय ज्ञान को जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उसको श्रवण करने की जरूरत पड़ती है. हम लोग जितने भी भाई बहने यहां पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं, वो भी काम पे जाते हैं, दुनिया से कनेक्शन है, लेकिन वो रोज सवेरे एक घंटा ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करते हैं और उसमें इतनी ताकत मिलती है कि हमको किस समय पर किस माहौल में कहां कैसे रहना है, उसकी रोज टीचिंग्स मिलती है. तो जैसे रोज अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा को भी उस वातावरण में मजबूत रखने के लिए ज्ञान और योग की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है, और वो यहां टीचिंग्स मिलती है। दूसरा, उसको भी सरवाइव करने के लिए अपने आप को दुनिया में खान पान की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, उस समय पर हम परमात्मा को अपने साथ में रखें, चलते फिरते उठते बैठते हम अपने शिक्षाओं को जो बाबा से मिली हैं उनको याद रखें, परहेज को याद रखें। तो एक तरफ आत्मा में शक्ति भी भरे और दूसरी तरफ सावधान भी, एक तरफ हम तीर भी चलाएं, दूसरी तरफ हमारे पास कवच भी होना चाहिए ताकि हम सुरक्षित। विश्वविद्यालय टीचिंग्स कहती है कि दुनिया तो कलयुग है ही, लेकिन हम जाके कलयुग की तरह हो जाएं, सब बह रहे हैं उल्टी धारा में, हम भी उल्टी धारा में बह जाएं, उनकी धारा में बह जाए, नहीं। अगर उसमें हमको विश्व को बदलना है और परमात्मा के आदेश पे चल के हमको दिव्य मानव बनना है और दिव्य मानव बनाना है, तो उसके लिए आत्मा में शक्ति बहुत जरूरी है। और शक्ति मिलेगी ईश्वरीय ज्ञान से, परमात्मा से राजयोग करें, उनको याद करें तो शक्ति मिलेगी। और तीसरा, खान पान की शुद्धि भी रखें, और उन सब की धारणाओं के लिए, मन की एकाग्रता के लिए पवित्रता, प्योरिटी यानी ब्रह्मचर्य की भी बड़ी आवश्यकता होती है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन।
बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत ही क्लियरली बात रखी है कि दिव्य गुणों की धारणा, जैसे कि अब चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, तो उस चढ़ाई पर जैसे हम हाइकिंग करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, तो हाथ में एक लाठी तो जरूर रखते हैं। वो लाठी क्या है? दिव्य गुणों की धारणा के लिए जो रोज हमको दिव्य ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं, वो उस ज्ञान को सुनना, नियमों की धारणा, खान पान की शुद्धि, ये हमारी रक्षा कवच है जिसको हम चलते रहे तो कंपटीशन कंपैरिजन के इस एज पर हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दिव्य गुणों की धारणा करके आगे बढ़ सकते हैं।
एक मिनट में कहना चाहूंगी कि अभी कल चंद्रिका दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हम यूनिक हैं। हम यूनिक हैं तो हमें आपसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, आपसे कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि हम हैं। उसकी एक सर्वश्रेष्ठ कृति है अपने में विश्वास करना। और जो भाई ने कहा कि जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे आत्मा को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो हमारे शहरों में जो भी जहां रहते हैं हम सेंटर्स हैं हमारे लिए दें, क्योंकि जब आप सुरक्षित हैं, जब आप बैलेंस हैं, तो आप अपना आसपास भी बैलेंस रखेंगे और उससे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। क्योंकि हमारे विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आप हमें 100 शिक्षित माँ दीजिए तो मैं आपको एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करके देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ हीरा बेन ने भी कहा, जो भाई ने कहा, कि जीवन जियो शुद्धि से, काम करो बुद्धि से। तो ये जो मंत्र हैं, कमल जी ने पहले कहा कि हमें मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि अभी माँ के पास भी टाइम नहीं है, बच्चे लोरियां नहीं सुन पाते हैं, नानी दादी साथ नहीं रहती हैं, कहां इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बच्चे को नरिश करते हैं। अब बच्चा गैजेट्स की दुनिया से पढ़ रहा है तो उसके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहे हैं, यूथ भटक जाते हैं। और आपको भी है कि जैसे आवेश में होते हैं कि नहीं मैं अभी जवाब दूंगा, अभी उसने ऐसे कैसे लिखा, तो आपके साथ मैडम है मिसेज नथानी जो आपको कहती है कंट्रोल योर इमोशन, तो somebody should be there into your life to do like this।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले समाज में जो हमारी यंग जनरेशन है उसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है, आज के माँ बाप के ऊपर है, क्योंकि बच्चों में जो कंपटीशन, कंपैरिजन, ये बच्चे नहीं करते, माँ बाप करते हैं कि उसका बच्चे ने 90% लाया, आपने 80 कैसे लाया, उसका बच्चा अच्छा डांस करता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं डांस करता है, उसका सो दिस द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स हमारे अपने से।
जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि विवेकानंद साहब ने कहा ना कि आप 100 शिक्षित माँ दीजिए, क्योंकि माँ पहली गुरु और टीचर होती है।
एब्सोल्युटली, तो वो जब तक हमारा अपने घर का माहौल नहीं बदलेगा तब तक जनरेशन आगे वाली नहीं समझेगी, तो वो कहना बहुत जरूरी है। और बाकी तो जो हमारे दिव्य का अर्थ है उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। आज अगर हम देखें समाज में कि कितना भ्रष्टाचार, कितनी अराजकता, कितना वायलेंस, ये लाइफस्टाइल हो गया है, करप्शन लाइफस्टाइल हो गया है। इसको हटाने के लिए या इसको कम करने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, वो क्वेश्चन अभी आएगा, कि मीडिया, कलाकार, राइटर्स, डायरेक्टर, सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जो अभी तक नहीं आ रहा है, कि हर आदमी सिनेमा को, टेलीविजन को बिजनेस समझ के चल रहा है। हमारा काम बिजनेस से ऊपर उठकर, बिकॉज हमारा एक दायित्व है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट मैं समझता हूं। और हर फिल्म का, हर जो भी आप करते हैं, उसका एक मकसद होना बहुत जरूरी है। अगर वो बेमकसद है, पैसों का मकसद है, तो वो नहीं करना चाहिए। सो फॉर एनी स्टोरी, एनी फिल्म, एनी सीरियल, एनी ओटीटी, फॉर योर प्रोग्राम, कोई ना कोई उसका पर्पज होना चाहिए, और वो पर्पज समाज के लिए होना चाहिए। अगर आपने 100 करोड़ आदमियों में से 10,000 आदमियों को भी वो मैसेज क्लियरली दे दिया, तो आपने अपना काम कर दिया। वो बहुत जरूरी है।
बहुत सुंदर। जैसे भी चर्चा चल रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, लाइफ के अंदर एक पर्पज के आधार से हमें आगे बढ़नी है, और ये भी बात निकले कि घर का माहौल पहले हम उसको सुधारे, माँ बाप, भाई बहन आपस में। तो मैं आदरणीय तृप्ति दीदी से पूछना चाहूंगी कि घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए कुछ बिंदु बताए, जिसे यहाँ पर भी जितने भी बैठे, भले बाय प्रोफेशन कलाकार है लेकिन एक माँ है, एक पिता है, एक भाई बहन है, तो माहौल बनाने के लिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वह आप शेयर कीजिए।
ओम शांति। आज घर घर स्वर्ग बने, सब चाहते हैं, और इसका मतलब उसके सामने ऑपोजिट क्या है, नरक जैसा, जहां लड़ाई, झगड़ा, झूठ आदि बहुत कुछ है। तो उसके लिए अब यही कहेंगे, पर्सनली हो या वैश्विक लेवल से भी, अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं कि दुनिया अच्छी बने या देश अच्छा बने, घर अच्छा बने, उसके लिए सबसे पहले तो स्वयं के प्रति ही ध्यान देना होगा, स्वयं से ही शुरुआत करनी होगी। और उसके लिए शायद कई जानते होंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इसी अर्थ को सिद्ध करता है, कि एक भाई था जो अपने कुछ कारोबार में बड़ा व्यस्त था, लेकिन उसका बच्चा उसे डिस्टर्ब करता था। तो फिर उसने सोचा, क्या करूं, वहां एक विश्व का नक्शा, मैप था, उसने वो देखा और उसके टुकड़े करके उस बच्चे को दिया कि आप इस विश्व को तैयार करो, नक्शे को। तो थोड़ा उसने सोचा और उल्टा सुलटा किया, पीछे कुछ उसको मनुष्य की आंख दिखाई दी, कहां कान दिखाई दिया उस बच्चे को, तो उसको आइडिया आ गया कि मनुष्य उल्टा हब करके मनुष्य को हम तैयार इजीली कर सकते, तो विश्व का मैप तैयार हो जाएगा। थोड़े ही समय में उसने तैयार किया और पिताजी को बता दिया। वो सोचने लगे कि इतना जल्दी कैसे, सार क्या रहा, हर व्यक्ति विश्व का एकम है, वो अगर अंदर में निश्चित करता है कि मुझे ऐसा घर को बनाना है शांति वाला, मैं पहले बहुत झगड़ा करता या गुस्सा करता, बहुत कुछ चलता था, संबंधों में भी बहुत कुछ चलता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सर्व समस्याओं का एक ही उपाय है और समाधान है, वो हमारा तपस्या। समस्या तपस्या से हल हो सकती है, बहुत सहज, क्योंकि आगे सुना वैसे ये संस्था इंटरनेशनल संस्था, कई देशों में इसके सेंटर, हजारों सेंटर हैं, और जगह जगह ये सेंटर्स खोलने का, चलाने का कार्य बहने करती है। और वो इतना जरूरी है कि बाहर का माहौल बहुत ही कमजोर, नेगेटिव या विकृत है, और ऐसे वातावरण में हमें अपने मूल्यों को, हमें अपने देवत्व को या दिव्यता को बढ़ाना है, तो ये स्थानों पर जाकर के एक तो सत्य ज्ञान क्या है वो परिचय सब कुछ समझना, फिर दिव्यता का स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, वो समझना, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठता है, गुण है, मूल्य है, वो वाइब्रेशन तो सब जगह है ही, अच्छे या बुरे, लेकिन परमात्मा के भी ऐसी हस्ती है जो ये सर्व श्रेष्ठताओं का अनादि अविनाशी केंद्र है। उसके प्रति कनेक्ट होकर के हम उस प्रवाह को अपने में माना अविनाशी आत्मा है, उसमें हम खींच सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे जैसे ये प्रवाह हम भरते जाएंगे, माना मेडिटेशन का अभ्यास करते जाते, हमारी इनर स्ट्रेंथ वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आज देखते हैं भक्ति तो बहुत बढ़ रही है, शक्ति जो आंतरिक है वो कम हो रही है। सबका ध्यान बाह्य बातों पर है, बाह्य रीति से हम बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, जैसे कपड़े पहने हैं तो कहेंगे वो बिगड़े नहीं, ध्यान रखे, तो हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा मोबाइल कैसा है, हमारे जो कुछ न कुछ प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, उस पर ध्यान देते, लेकिन हमारी सोच क्या है, जिससे हमारा जो ओरा है वो बिगड़ता है, उस पर ध्यान नहीं है। घर में भी माताएं जैसे कई बार अपने फ्रेंड को बोलेगी फॉर्मालिटी के लिए कि आप हमारे घर आना, बहुत दिनों से नहीं आए, वो सोचते हैं मुझे कहा है तो चलो मैं जाऊं, दो दिन में ही वो जैसे कहती है मैं आऊंगी, तो जिसने निमंत्रण दिया वो सोचेगी देखो उसको मैंने बोला और वो तो आ गई, माना अंदर में क्या था और बाहर क्या, बाहर मीठा पॉजिटिव बोले और अंदर में नेगेटिव चले, इससे संबंधों में जो मधुरता है वो नहीं आ सकती। कार्य कौन करेगा, जो हमारे वाइब्रेशन से वो काम करता है।
बहुत सुंदर।
वैसे कोई कहां भी जाता फूलों से स्वागत करता है, कोई भी कारण से उसको फ्रेश फूल नहीं मिले और वो जो भी थोड़ा मुरझाया हुआ था उससे स्वागत किया तो तुरंत उसको होगा देखो मेरी इतनी ही कीमत, ऐसे मुरझाए हुए फूल से मेरा स्वागत किया, उसको अच्छा मिला ही नहीं, मेरी वैल्यू ही इतनी, वो दूसरों को सुनाएगी, फिर क्या होगा, उसके अंदर में जो चित्त में भर गया है कि फूल ऐसा है, किसी को कहेगी तो सारे शहर में उसको यही सड़ा हुआ फूल मिला, तो या तो उसको उस फूल को फेंक देना चाहिए या उसे पानी में रख दो, थोड़ा शायद मुरझाएस कम हो, लेकिन करते क्या है ना? ऐसे नेगेटिव कमजोर सोच, और अपने तक नहीं रखते, दूसरों तक भी पहुंचाते हैं।
बिल्कुल दीदी, सही कहा आपने कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा विचार, हम अपने विचारों को ठीक करें, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने कहा कि जब विचार हमारे चलते हैं तो वो वाइब्रेशन फैलता है, दूसरों तक पहुंचता है, अपने तक सीमित नहीं रहता। और एक बहुत अच्छी बात दीदी आपने कही कि समस्या को मिटाने के लिए तपस्या चाहिए। तो मैं सतीश भाई से पूछना चाहूंगी कि तपस्या है क्या? आप तपस्या शब्द सुन के तो कहेंगे कि हम तपस्या कैसे करें, हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन एक सरल भाषा में तपस्या क्या है? यूं देखें तो हम सब तपस्वी हैं, हम सब तपस्वी हैं, लेकिन एक सिनेरियो आपके समक्ष रखना चाहती हूं। अगर कोई, मैं संस्था के अंदर नहीं हूं, मैं घर गृहस्थ में रहने वाली एक साधारण सा व्यक्ति हूं, अगर कोई मुझे बार बार दुख देवे वाणी से, कर्म से, या विचारों से भी, तो उस दुख के कारण मैं बार बार दुखी होती हूं, तो क्या मैं उस समय पर अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर सकती हूं? उस समय ये जो समस्या है, इसमें मैं क्या तपस्या करूं? आप ये बात स्पष्ट कीजिए ताकि हरेक को पता चले कि इस समस्या में मैं क्या तपस्या करूं जिससे अपने अंदर में दिव्य गुणों की धारणा ऐसे सिनेरियो में भी कर सकूं।
बहुत अच्छी बात पूछी है। एक तो तपस्या क्या है, और दूसरा यदि हमारे ऊपर बाहर से टॉर्चर होता है या बहुत कष्ट में है या दुख में है, तो हम उस माहौल में क्या हम अपने आप को दिव्य गुण से भरपूर कर सकते हैं या श्रेष्ठता की ओर जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा तो एक ख्याल है कि हर एक के जीवन में ये उतार चढ़ाव तो आता ही है, समस्याएं भी बहुत हैं। कलयुग में तो घोर समस्याएं हैं, जिधर देखो तो समस्याओं का ही पूरा वो चीज है। लेकिन हम अगर देखा जाए तो कैसी भी स्थिति हो, उसमें अगर हम, हमारी सोच अच्छी है, तो हम उसका बहुत सहज रूप से सामना कर सकते हैं। अब जैसे हम सब हैं, हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, हम तो यहां समर्पित हैं, रात दिन ज्ञान योग कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोच को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, औरों को सिखाते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिव्य मानव बन गए, हम भी उसी प्रोसेस में हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो मोटे मोटे रूप हैं, जब हम यहां आए तो छूट गया, लेकिन क्या काम से मुक्त हो गए? अभी भी कहीं न कहीं सूक्ष्म में कहीं न कहीं वो चीज है। क्रोध भी है, क्रोध मोटा रूप खत्म हो गया, लेकिन वो हो गया। आसक्ति अभी भी कहीं न कहीं है। अब हमने क्या किया, अब अपने पुरुषार्थ को हमको लेवल पे लेकर जाना है, तो इंडिविजुअली हमको अटेंशन देना पड़ेगा। कोई भी काम में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है कि डिटर्मिनेशन हो। जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज जिसको हमारे यहां स्वमान कहते हैं, सेल्फ इस्टीम। मैं क्या हूं, मुझे परमात्मा मिला है, उसने क्या ज्ञान दिया है, मैं कितना भाग्यवान हूं। अगर ये सब स्मरण करते हैं तो विपरीत स्थितियों में भी हम अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं आप सबको कि मेरे पास तमाम रचनाएं हैं, मैंने हर स्थिति में गीत लिखे, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी आती हैं कि जब जैसे मन कमजोर होता है वो मैं पढ़ता हूं तो जैसे लगता है मेरे खून में ताजगी आ गई और रवानगी आ गई। जैसे एक कविता छोटी सी है, लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतना ही तेज निखरता है, और सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही तेज चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम शिव की संतानें हैं, हम शिव की संतानें हैं कि वो सोचे मार्ग सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, हर संकट का हल होगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
जी। इस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। जो बाबा का ज्ञान है इतना अच्छा मिला है कि जितना आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, एगोलेस होकर के और बाबा को कहें कि बाबा मैं कोशिश तो कर रहा हूं, चल तो रहा हूं, लेकिन अभी भी इस कमी पर हम विजय नहीं पाए, बाबा आपका साथ और आपका हाथ, जो आपने हमसे एक्सेप्टेशन रखा है कि तुम बच्चे ऐसे बनो, आपकी अपेक्षाओं पर आपकी मदद से हम जरूर खरा उतरेंगे, हम आपके संकल्प को पूरा करेंगे। तो हम अपने आप को चेकिंग करते रहते, जिनमें चार्ट लिखते हैं, अमृत वेला योग करते हैं, ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करते हैं, औरों को भी सुनाते भी हैं, रात दिन अपने सोच को, अपने विचार को ऊंचा ले जाने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में भी हम मजबूत रह पाए, कैसे रह पाए उसका चिंतन मंथन होता है, तो क्यों नहीं हम दिव्य मानव बन सकते हैं।
वेरी नाइस। मैं चाहूंगी डॉक्टर शिल्पा जी से भी, लेकिन मैं सतीश भाई जी के ने जो आपने बोला बहुत सुंदर, जो तपस्या की परिभाषा जो आपके वक्तव्य से मुझे समझ में आया कि अपने संकल्पों की दृढ़ता को सदा कायम रखना, कैसे भी परिस्थिति में अपने विचारों को नीचे ना आने देना और उसके लिए सतत प्रयास करना, ये हम सब तपस्वी है इस रूप से। अगर इस बात से हम तपस्या को आगे बढ़ाए तो हर समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर शिल्पा जी से भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि आप एक डायरेक्टर, एक फाउंडर है, आपके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे और बहुत सारी समस्याएं आपने भी फेस की होगी, तो आप बताइए कि तपस्या के रूप में आप किस प्रकार से करते हैं, लोगों के संपर्क में कैसे आते हैं, समस्या को कैसे भगाते हैं।
यस, एक्चुअल में कभी भी कोई भी परेशानी आती है तब हमारे ही मंतव्य में हम अपने आप से ही बहुत बातें करते हैं, तो हमें एक सही रास्ता दिखाता है और एक गलत रास्ता दिखाता है, तो हमें उस टाइम पे उस सही रास्ते को पकड़ के रख के संयम, यानी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारे हॉस्पिटल में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। एक बार हमारे वहां एक पेशेंट ने बहुत बड़ा बवाल किया और 50-60 मीडिया वाले हमारे सामने आ गए कि आप हमें इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। वो इतने हावी हो गए, इतने हावी हो गए कि उनका ये मकसद था कि मैं भी बहुत हावी हो जाऊं। तो मैंने उन लोगों को सबको बोला कि आपको बेसिकली मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं ये कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, आप पहले सबसे पहले आप सब शांत हो जाइए। आप नहीं मानोगे, वो सब लोग तकलीफ हो गए कि ऐसा बिहेवियर आज दिन तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनको ऐसा था कि वो एक्साइटमेंट से हमें डरा देंगे, मगर उस टाइम पे अगर हमने थोड़ा सा संयम रखा तो वो लोग शांत हो गए। तो हमारे बिहेवियर से हम सामने वाले को भी शांत कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर बहुत हावी है तो हमें भी हावी होके उससे डबल आंसर देना है। तो हमें समय और परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी हावी नहीं होती हूँ, मगर ये सब हावी नहीं होने के लिए कॉन्स्टेंट हमें प्रयास करना पड़ता है, आत्मा की शुद्धि के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, प्लस ग्रेटिट्यूड। हर एक मोमेंट पे अगर हम ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कहते रहेंगे हर एक मोमेंट पे कि भगवान ने जो भी हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करते रहेंगे, हमारे हर एक विचारों में हम धन्यवाद कहेंगे, अगर हम देने की भावना देते रहेंगे, तो मेरे को लगता है कि धीरे 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 हम शांत होते जाते हैं और हमारे एटीट्यूड में वो दिखने लग जाता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, रोज एक कॉम्प्लिकेशन आते ही रहते हैं, मगर उस टाइम पे हमें क्या रिएक्ट करना है वो हमारे पे ही है, और उसके लिए हमें कॉन्स्टेंट तपस्या करनी पड़ेगी, और वो अगर हम करते हैं तो हम 100% उसमें से पार निकल सकते हैं।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बार बार अपने ऊपर अटेंशन, अवेयरनेस, जैसे दी ने कहा, हम बाहरी तौर पर ज्यादा देखते हैं कौन क्या पहन रहे, कौन क्या खा रहे, यही अवेयरनेस अपने अंदर रहे तो यही तपस्या है, इस बात पर ध्यान देवे। शैलेश जी आप कुछ कह रहे थे।
हाँ, वो जैसे हमारे कमल साहब ने कहा था कि हम बाहर के लोग हैं ना, हम बाहर ज्यादा लोगों को डील करते हैं और हम मीडिया कर्मी आम आदमी को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी समस्याओं को उठा के कुछ फिल्म कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं। तो आहत, आपका सवाल था कि आहत होने के बाद आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखेंगे और उससे सामंजस्य स्थापित करके आगे चलेंगे। तो हमारा ये कहना है कि आज जो हम इमीडिएसी में जी रहे हैं कि बटन दबाया चैनल चेंज हो गया, बटन दबाया ये हो गया वो हो गया, अब रोबोट्स भी घरों में आ गए हैं जो काम करते हैं, तो नहीं, इतना मैकेनिज्म और इतना गैजेटियर्स नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा उस मौके को, थोड़ा सा शांत हो जाए वो, फिर आप उस पर जब रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज को या हर बात को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा अवॉइड करें, बहुत कुछ आप टाल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है मौन और मुस्कुराहट सबसे बड़ा शस्त्र होता है, आप उसे धारण करें, देखिए सब ठीक हो जाएगा।
वेरी नाइस, मौन और मुस्कुराहट।
थैंक यू मैम।
हेलो, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आज के गैजेट्स, आज की चीजें, लोगों का जो पूरा एक नजरिया है वो बदलता जा रहा है। अभी हाल ही में 19-20-21 में जो कोविड आया था, सब लोग बहुत ही उस बुरे उस दौर से गुजरे हैं, हम सब ने उसको देखा है। लेकिन मैंने हर जगह हर इंटरव्यू में सबको ये कहा कि मेरे लिए वो कोविड के 6 महीने या 1 साल सबसे अच्छा टाइम था। इसलिए टाइम था क्योंकि सारा परिवार एक साथ था, एक घर में था, सारे काम हम साथ में मिलके करते थे, किसी को किसी के और बाहर वाले की जरूरत नहीं थी। खाना साथ में खाते थे, झाड़ू पोछा साथ में करते थे, बच्चों के साथ खेलते साथ में थे। सो वो एक सीख थी मेरे ख्याल से हम सबके लिए कि वो 6 महीने में हम लोग वो लॉकडाउन के टाइम पूरा परिवार हमेशा साथ आया और उस 6 महीने जो बॉन्डिंग क्रिएट की है वो आज तक दिखती है।
दैट
इज रियली इम्पोर्टेंट।
ईश्वर ने बताया कमल जी आपको, परमात्मा ने, कि आपकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। आप अननेसेसरी कबर्ड्स अपने भर के रखते हैं, अननेसेसरी होड़ की दौड़ में भाग रहे हैं जबकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वो कोविड में परमात्मा ने ये सिखाया और अभी भी ये जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, हर 100 वर्ष बाद प्रकृति अपने आप को बदलती है, हम सब इसके साक्ष्य हैं और साक्षी बन रहे हैं। तो हम उस परमात्मा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि हम कैसे बदलते हुए लोगों को देख रहे हैं। और यही तो आज हमारी शुरुआत है कि कैसे हम दिव्यता की ओर जाएंगे। राइट
बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी से ही एक और प्रश्न है, क्योंकि आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, काफी लोग आपके संपर्क में हैं, और फिल्म सिटी के अंदर क्या है क्या नहीं है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या कलाकारों को आज के इस भौतिकवादी युग में दिव्य गुणों की धारणा के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ता है?
संघर्ष तो आज जीवन का मेन वो रह गया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर आदमी हर वक्त कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो बाकी बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा मकान बनाए, अच्छा सीमेंट यूज करे जैसे बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, उसी तरीके से फिल्म मेकर की, आर्टिस्टों की, कलाकारों की, मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि समाज स्ट्रांग बने, समाज स्ट्रांग बने, ऐसे हम प्रोग्राम्स दें, ऐसे उनको कहानियां दें, ऐसे उनको संस्कार वाली चीजें दें जिससे आने वाला समाज, आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है।
सो आपकी तरफ से एज अ कलाकार आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, जो आप पहल करें और उस कंट्रीब्यूशन के आधार से लोग भी आपको देखकर कि दिव्य गुणों की धारणा करना सीखे, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए?
कंट्रीब्यूशन की जहां तक बात है, देखिए अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मुझे इतना मालूम है कि 40 साल में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं चाहे वो म्यूजिकल हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो थ्रिलर हो, क्राइम थ्रिलर हो, लेकिन उसके पीछे एक पॉजिटिव मकसद रहा है। ये एक मेरा वो है। चाहे जो मेरी पहली फिल्म द होप है, वो नाम ही है होप, कश्मीर इशू के ऊपर फिल्म थी, टेररिस्ट को बचाने की, एक आर्मी किस तरह से एक टेररिस्ट को बचाकर वापस ला रही है, और उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसके ऊपर वो फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था। तो सिचुएशन कोई भी हो, उसको पॉजिटिव तरीके से देखना जरूरी है। हर आदमी बुरा नहीं होता, हर टेररिस्ट बुरा नहीं होता, वो टेररिस्ट क्यों बना उसके पीछे और उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत जरूरी चीज है। सो नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए पॉजिटिव समाज को लेकर आना, ये हम मीडिया का और कलाकारों का ये मेरे ख्याल से रुझान होना चाहिए। अननेसेसरी आज एक अगर एड फिल्म भी बनती है, जो साइकिल की एड है या आपके टायर्स की एड है, उसमें आप न्यूड लड़कियों की तस्वीरें लेकर आना या उसका इलॉजिकल एक्सप्लॉइट करना, इट डजंट मेक सेंस। अगर तो उसको अगर हम सीधी सीधे तरीके से अच्छी साफ सुथरी फिल्में बनाए तो चलती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर बासु चटर्जी से लेकर सबने अच्छी फिल्में बनाई हैं और वह सब परिवार के साथ देखी गई हैं। तो इसलिए अच्छा सिनेमा मेरे हिसाब से हमेशा चलता है और एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है और एक अच्छा पैगाम देता है। ये हर हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
ठीक है, तो शिल्पा जी ऐसे डॉक्टर दिव्य गुणों की धारणा से एक दिव्यता लाए समाज के अंदर, तो उसके लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे?
यही मेरा भी प्रश्न था भाई जी से।
ओके।
कि आपने बताया तो दिया कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लेकिन ये भी बताएं कि एक्शन प्लान क्या है।
आपका प्रश्न दोबारा बोलेंगे?
एक्शन प्लान यही है कि एक्शन प्लान यही है कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना भी काम बहुत हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, OTT पे रोज नए चैनल आ रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ काम करें। ये देखें कि अगर ये प्रोग्राम आपका आप परिवार के साथ देख सकते हैं, आप अपनी माताओं बहनों बेटियों के साथ देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो आप जरूर बनाएं, नहीं तो ना बनाएं।
जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
मेरे हिसाब से मेरे को भी भगवान ने बहुत अच्छा एक माध्यम दिया है सेवा करने का। हॉस्पिटल में जो भी आता है वो रोता हुआ आता है, हमें उसके हंसते हुए बाहर निकालना होता है। तो मैं कॉन्स्टेंट ये ट्राई करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन। व्हेन आई स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल आई एम अ 20 इयर्स ओल्ड गर्ल एंड आई एम रनिंग दिस हॉस्पिटल सिंस लास्ट 25 ईयर्स। तो मेरा एक ही मोटो था कि रोता हुआ इंसान आ रहा है उसको हंसते हुए भेजना है। तो ये मोटो से मैं 25 साल से काम कर रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो बहुत अच्छी तरह निभाया भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टाफ को भी, हम जो बिहेव करते हैं हमारे आस पास के लोग वैसा ही बिहेव करते हैं। जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, अगर आज कोई बुजुर्ग हमारे वहां आता है तो मैं खड़ी होकर अगर उनके पैर छूती हूँ तो मेरे आसपास वाले पूरे स्टाफ 100% पैर छूते हैं और मिस बिहेव नहीं करेंगे। शायद वो अच्छा बिहेव करे कि नहीं करे आई डोंट नो, मगर मिस बिहेव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को इतना पावरफुल करना है कि हमें देख के, क्योंकि हम एक जिम्मेदार समाज की एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर हमें हमारे आचरण से, बहुत जैसे फिल्म इंडस्ट्री के हर एक कलाकार से करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसका बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको अगर वो अपने 1% बिहेवियर में भी चेंज लाएंगे तो बहुत सारे लोगों को वो इम्पैक्ट कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि मेरे थोड़े से भी प्रयास से जितने लोगों को मैं इम्पैक्ट में ला सकूं और कनेक्ट कर पाऊं तो मैं 100% करूंगी, और मेडिकल फैकल्टी में जितना मैक्सिमम पॉजिटिविटी फैला पाऊं वो मैं जरूर करने का ट्राई करूंगी।
बहुत सुंदर, बहुत ये एक दिव्य गुणों की धारणा का एक रूप है। जिस प्रकार से मैं कर्म करूंगी मुझे देख सब करेंगे, ये तो शिक्षा यहाँ पर मिलती है। तो आपने वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी करके दिखाया है और आगे भी इसको करते रहेंगे। सो शैलेश जी, आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा? आप तो कह रहे थे कि कला से हम दिव्यता को पा सकते हैं, उसको थोड़ा सा समराइज करते हुए बताएं समय की सीमा को देखते सीमा हुए।
हमारे यहाँ कहते हैं नाद ब्रह्म होता है, शब्द भी ब्रह्म होता है। आप जो बोलती हैं अगर सोच के बोलें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। महाभारत का युद्ध सिर्फ द्रौपदी जी के कहने पे हो गया था, बाद में उन्होंने नारायण से कहा भी कि देखो ना क्या हो गया, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं उसके रक्त से अपने केश को धुलूंगी, नहीं बांधूंगी, तो अब क्यों? तो हमेशा आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हैं। और हम औरतों में ऐसा अग्रेसिवनेस जिद होता है कि नहीं बस अब हमने जो कह दिया सो कह दिया, तो हमेशा बोलने से पहले कहने से पहले उसको सोचें। तो सोचेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। और हम मैं सिंगर हूं तो सिंगिंग को इसीलिए प्रभु तक पहुंचने का एक सहज माध्यम बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई उठना नहीं चाहता है, सोना सबको अच्छा लगता है। जब हम स्वर लगाते हैं तो उससे भी हम फ्रेश होते हैं और परिष्कृत शुद्ध होते हैं। अगर हम अपने आप में परिष्कृत होते जाएं तो आधी समस्याएं हम वैसे ही जीत लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं को बदलने की जरूरत है। और हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी माइथोलॉजिकल किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कहानियां हैं, जिन पर अगर हमारे लोग काम करें तो हम नहीं समझते हैं कि कोई कमी होगी हमें एक अच्छा समाज गढ़ने में या कहने में। तो सब जो आज हमारे आसपास बिखरा है, फैला है, वो सिर्फ और जो परोसा जा रहा है वही ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक रामायण का छोटा सा प्रसंग देती हूँ कि राम को उनका राज्याभिषेक होना है, तो कौशल्या बहुत जाहिर है माँ बड़ी खुश होंगी कि आज मेरे बेटे का राज्य तिलक हो रहा है, चलो 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 सब लोग। उतने में कैकेयी का वरदान वो मांग लेती है दशरथ से कि नहीं उसको आज ही जाना होगा। अब आज आप इमेजिन करिए कि आज की अगर माँ होगी, कौशल्या का चरित्र कितना बड़ा है। हमारे इंडस्ट्री में हमेशा दिखाया जाता है कि नहीं औरत ऐसी ही होती है, निगेटिव चीज को, निगेटिव पॉजिटिव सब है हमारे अंदर। तो जब राम गए हैं कि माँ मैं आ गया हूं, तो कौशल्या कहती नहीं बेटा तुम्हें तो बाहर वनवास जाना पड़ेगा। कितनी बैलेंस होके देखिए जवाब देती हैं। अच्छा क्यों? तुम्हारी माँ का आदेश है कैकेयी का, तुम्हारे पिता का होता तो मैं जाके उनसे झगड़ा कराती, बोलाती कि तुम कैसे हो बाप की तुम बेटे को ऐसे भेज रहे हो 14 वर्ष में, मगर माँ का आदेश है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये औरत कितनी उदार देखिए दिखाई गई है। और आज अगर कैकेयी नहीं होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, वो एक राजकुमार होते, हम उनकी कहानी पढ़ते होते। तो हमारी माँ का होना बहुत जरूरी है, बहनों का शिक्षित होना और बोलने से पहले उससे विचार करना। हम कहते हैं कि बच्चा है कुछ भी बोल देते हैं, नहीं समझेगा, बच्चा नहीं है, वो आपका अनुसरण करता है। मीरा को माँ ने कह दिया, बारात देख के उन्होंने क्यूरियोसिटी से पूछा मेरा ब्याह कब होगा, माँ कहती है अरे है ना वो तेरा पूरा जीवन दे दिया, बिना देह के नेह लगा के मीरा मीरा बन गई, प्रेम की आस्था की पराकाष्ठा बन गई। ऐसा देश है हमारा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। अब मैं आदरणीय दीदी जी से और साथ में सतीश भाई जी से चाहूंगी, अंत में सभी कलाकारों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, आपका एक संदेश, कुछ टिप्स बताएं, छोटे छोटे टिप्स भी हो सकते हैं जो आसानी से अपने प्रोफेशन में रहते, घर गृहस्थ में रहते हुए भी दिव्यता की धारणा सहज हो जाए, वो राज्यों के टिप्स, वो व्यावहारिक टिप्स दीदी जी आप प्लीज साझा करें सबके समक्ष।
जैसे आप सभी ने स्वयं का परिचय लिया, ओरिजिनल गुण कौन से हैं, मुख्य सात वो याद होगा। अभी व्यवहार में जब हमारे सामने कोई गुणों से विपरीत काम करते, मानो गुस्सा किया, तब आप क्या करेंगे? अभी ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, तो जरूर उसका जवाब हम भी वैसे देंगे, लेकिन यहां आए हो राजयोग का अभ्यास भी किया, कई प्रकार की सत्य समझ मिली। तो एक काम है कि हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना है। मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। जैसे सातों गुणों में से कोई भी, जैसे आपकी सिचुएशन हो ऐसे कोई भी एक गुण को आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम रहेंगे तो फिर हम दूसरों के लिए भी, सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा है तो आप उसको भी वाइब्रेशन भेजेंगे कि आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत हो जाओ, तो उसका जो फोल्डर बंद है वो खुल जाएगा, आपके संकल्प से भी खुल सकता है। खुद का तो खुला हुआ है जो हमने तुरंत अपना लिया, मैं शांत हूं मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सामने वाला भी शांत हो जाए, ऐसी एक विधि, ये समझ प्रैक्टिकल में करेंगे तो सामने वाले में शक्ति आ जाएगी। तो ऐसा जैसे प्रैक्टिकल में क्या करें, कुछ संकल्प लेकर के जाए तो इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी।
बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। संकल्प लेकर के जाए और उस संकल्प को तपस्या के रीति से निभाए। सतीश भाई जी, आपकी तरफ से एक दो टिप्स बताएं, फिर हम कंक्लूड करते हैं।
सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन और ये टॉक शो का जो बात है, ये सब हम सब मिलकर के प्लान बनाते रहे बहुत समय से कि कब ऐसे दिन आएंगे जब फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे कलाकार यहां पर आएंगे। और आज जो विकृति हो गई है, जो विद्रूपता है, इसका हल निकलने के लिए जब तक वो खुद नहीं सुनेंगे तब तक कैसे हो गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के कितने भाई बहने यहां पर अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जीवन में धारण कर रहे हैं और सब दुनिया को संदेश दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। आप सब जो आए हैं, मैं चाहूंगा, जैसे मैंने पूछा कि एक्शन प्लान क्या होगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक्शन प्लान यहां से है कि जितने लोगों को मोटिवेट करें, अगर हमारी बात से कोई प्रभावित ना हो कम से कम इतना कहें कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाइए, आपको आत्मा में शक्ति मिलेगी, राजयोग सीखिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अगर हमारे चलते फिरते हमारी मुस्कुराहट से किसी को नया जीवन मिलता है, खुशी मिल जाती है, अगर हमारे एक बोल से कोई इंस्पायर होता है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क संबंध में आता है और दिव्य गुण धारण करने की थोड़ी भी कोशिश करता है, तो हम सबका इस बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बार फिर से इस टॉक शो के माध्यम से, अपनी बहनों के माध्यम से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा नहीं कि संभव है कि नहीं संभव है। संभव न होता तो कॉन्फ्रेंस रखते ही नहीं। हम सब उसके लिए तैयार हैं और यहां से संदेश जाना चाहिए, आपका साथ मिले, हम सब पूरा तैयार हैं और एक दिन आएगा हम पूरे अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे और हम सब देवी देवता दिव्य मानव बन ही जाएंगे। बहुत बहुत
बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक एक को मैं नाम लेकर के बहुत धन्यवाद करूंगी, आदरणीय चंद्रिका दीदी की तरफ से भी और पूरे आर्ट एंड कल्चर विंग की तरफ से भी। बहुत सुंदर आप लोगों ने विचार रखे और जो आप हमारे समक्ष बैठे हुए जो श्रोतागण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत दिल से, रुचि से, बहुत तसल्ली से बैठ करके आप यहाँ पर बैठ करके सुने और आपके मन में भी कई प्रकार के विचार चल रहे होंगे। हो सकता है वो विचार और भी श्रेष्ठ होगा जो यहाँ पर बैठ करके हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर मौका मिलता तो जरूर आपसे भी सुनते, परंतु वो विचार केवल विचार मात्र ही न रहने दीजिए, अपने स्थान पर जाकर के उसको प्रैक्टिकल एक्शन में दिखा करके जब करेंगे और फिर अगले वर्ष जब इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस यहाँ होंगे तो उनको भी, अपने साथियों को भी साथ लेकर के आएगा। तो इसी शब्दों के साथ हम कंक्लूड करते हैं।
सुनैना जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने खूबसूरत सवाल हम सभी के आगे रखे कि हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए कि हम सब आज अपने से संकल्प करेंगे और जाएंगे तो इस संकल्प को साथ लेकर जाएंगे तो अवश्य हम एक दिव्य मानव अपने आसपास, अपने घर में बना सकेंगे, ये विश्वास के साथ। तो जो मैंने दुष्यंत जी की लाइन कही थी उसको एक लाइन खाली गा देती हूँ.
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए.
वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच शैलेश जी. और हम सभी एक मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे.